तो बात क्या है, ये आपके लिए खुशी की आयत, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के आमाल से बेखबर नहीं। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी इसका शेवा है। दोबारा इस सूरत में आयत आ गई, यानी सूरत में ये मजमून आ गया। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और इंसानों की नस्ल से उठाया है। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है। और वो क्या है? क़यामत। ये हर एक के दर्जों की बात क्यों हुई, इसको जरा नोट कीजिएगा। वली कुल्लिन दरजात, सबके दर्जे। हदीस में आता है कि जन्नत के 100 मुख्तलिफ दर्जे हैं। ये किस दर्जे पे? हर एक की एफर्ट्स पे। देखिए, दुनिया में आप जहाज में सफर करते हैं, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, कोई बहुत ही खास होगा तो हो सकता है उसको कैप्टन के साथ ही बिठा दे, दर्जे है ना। होटलिंग में देख लीजिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 7, और मेरा ले 8-9 स्टार तक होटल बन चुके हैं। फर्क क्या दोनों का? जितना देते जाओ उतनी सर्विस लेते जाओ, यही दर्जा है ना। अब आप जन्नत के बारे में सोचिए, 100 दर्जे हैं। पहले तो अल्लाह का करोड़ शुक्र कीजिए कि उसके 100 दर्जे हैं। हम जैसे लोग पहले दर्जे में भी पहुंच गए जोड़ तोड़ करके नेकियों का, तो वो कहते हैं कि जान छुटी सो लाख हो पाया। आप इमेजिन कीजिए जन्नत का बस सी की दर्जा होता और वो बिजनेस क्लास होता, जन्नतुल फिरदौस, और मुझे और आपको उसके लिए एफर्ट करनी है, तो मारे जाते ना। आप ऐसे सोचिए ना कि जैसे हम नीचे खड़े हैं और ऊपर जाना है और बीच में 100 स्टेप्स हैं। जो बंदा पहले स्टेप तक पहुंच भी गया वो भी पहुंच ही जाएगा ऊपर, लेकिन जो 100वें पे पहुंचेगा वो तो फिर बहुत ऊपर पहुंचेगा ना। तो पहले तो इसमें अल्लाह ताला ने लोगों की रियायत की है अल्हम्दुलिल्लाह, कि चलो नहीं कर सकते ना, कम अज कम फराइज पे तो आ जाओ। ये जो आज आप मुसलमानों का तजाद देखते हैं फिर घबराते हैं, और कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ये जायज है, कोई कहता है ये फर्ज है, कोई कहता है पर्दा जायज है, कोई कहता है चेहरे का जायज है, कोई कहता है ये एक्सट्रीमिज्म है, कोई कहता है सुन्नत है, कोई कहता है दाढ़ी, आप सुनते हैं ना, कोई कहता है ये करो। ये दर्जों में जाएंगे सब। मुझे और आपको क्या गोल बनाना है? क्या बनाते हैं दुनिया में? हमें आला तरीन पे जाना है। आला पे जाएंगे, कोशिश पूरी ना हो सकी बीच में गिरेंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। एक स्टूडेंट जो गोल बनाता है कि मैंने सिर्फ 33 नंबर लेने हैं, तो वो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? 20-25 पे। और जो कहता है मैंने 100 में से 100 लेने हैं, ना आए 100 में से 100, 90 तो आएंगे ना, 80 तो आएंगे ना। तो अब मैंने और आपने किस दर्जे की जन्नत लेनी है, या पर मैं सोच लें, और मैं इसको दुनिया पे रख के सोचती हूँ, अल्लाह के हुक्म से एक स्टैंडर्ड बन जाता है इंसान के जीने का। हम सब यहाँ रहते हैं ना, हम जहाँ की सादी भी चीज लेंगे ना, तो वो बात दफा हमारे मुल्कों की बहुत अच्छी चीज से भी अच्छी होती है। अब जब पाकिस्तान जाते हैं आपके बच्चे, पेट क्यों खराब हो गया? डायरिया हो गया, और जी वहां जाके तो बीमार हो गए, क्योंकि वो बेचारे मक्खियों के आदी नहीं है, और वो पानी मिले दूध के आदी नहीं है, और दही बड़े जिस पे 100 मक्खियां बैठ गई उसको खाने के आदी नहीं है। अब वहां जाके मेरे सास होते, हम कहते नहीं हम अपने बच्चों का फूड यहां से लेकर जाएंगे। हम नेमतों में पल गए ना। इमेजिन कीजिए कि जब हमें दुनिया में नेमतों की आदत पड़ गई है, तो जन्नत के हल्के दर्जे पे कैसे चलेंगे? आपको पतली लॉन की आदत पड़ जाए, आप मोटी वायल पहन ही नहीं सकते। प्योर सिल्क की आदत पड़ जाए, आप सिंथेटिक कपड़ा पहन ही नहीं सकते। कहते हैं ना, अल्लाह हुस्न देता है नजाकत आ जाती है, पैसा देता है ये नखरे आ जाते हैं। तो हम अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह तूने हमें इन मुल्कों में और इस दुनिया, मुल्क से नहीं, हमारे मुल्कों में माशाल्लाह बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, हमसे भी ज्यादा वो अमीर होंगे, लेकिन जब अल्लाह तूने दुनिया में नेमतों का आदि किया, तो अल्लाह हमें जन्नत में महरूम ना करना। पाकिस्तान से आए हुए को इधर रहना पड़े वो रह लेगा, यहां की पली बड़ी बच्ची को पाकिस्तान के किसी गांव में भेज दे वो नहीं रह सकेगी। तो अल्लाह हमने तो दुनिया में शाही देख ली, अब हम फकीरी नहीं देखेंगे, तो हमें वहां की भी नेमतें आला दर्जे की अता फरमा, और अल्लाह से ये कोई मुश्किल नहीं है। इसीलिए फरमाया, कुल या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, ए नबी कह दीजिए कि लोगो तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूं। इसको नोट करें, वहां क्या मिम्मा अमिलू, यहां क्या कहा अमल करो। जन्नत किससे मिलेगी? अमल से। अच्छा, अब जरा आप इस आयत पर नजर जमाइए, मैं इसको 2-3 मुख्तलिफ एंगल से पढ़ती हूँ। वलिकुल्लिन दरजातो मिम्मा अमिलू की जगह बदलिए जरा, ख्वाहिश की, दुआएं की, बात बनती है। यानी जन्नत में तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक दर्जा मिलेगा। आपका बच्चा जितना मर्जी कह ले, पेपर में लिख के आएगा तो 2 नंबर मिलेंगे। दुआएं कराते हैं दूसरों से, खुद अमल नहीं करते। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाए, फसौफ तालमून, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जामेकार किसके हक में बेहतर होता है। बहरहाल यह हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद इसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया और कहते हैं ये अल्लाह के लिए अपने ज़ोम में और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए वो तो अल्लाह को नहीं पहुंचता मगर जो अल्लाह के लिए है वो इनके शरीकों तक पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये। अब देखिए मक्का वालों की एक बड़ी ही अजीब सी आदत थी, अपनी फसलों के तीन हिस्से करते। इमेजिन कीजिए किसी के पास तीन कनाल जगह जिसमें वो अपना बीज लगाता। एक कनाल के लिए सोचते कि इसमें से जो फसल आएगी ना ये हम अल्लाह के नाम पे सदका देंगे। सदका वो भी देते थे अल्लाह के नाम पे। दूसरे हिस्से से कहते थे ये हमारे अपने मनी मैटर और हमारी अपनी जिंदगी के लिए। तीसरा जो प्लॉट था उसके लिए कहते हैं इसकी फसल जो उगेगी उसका सब प्रॉफिट अपने बुतों को दे देंगे। अब कभी क्या होता, पहला प्लॉट जिसमें अल्लाह के नाम का रखा था उसमें फसल ना आती, बाकी दो में आती। तो अब हिस्सा किसका गया, अल्लाह का। कहते देख लो है ही नहीं अल्लाह के नाम पे कुछ देने को, हम क्या दें, चुपके से अल्लाह को कुछ ना देते। किसी साल फसल उसमें ना आती जो के बुतों के नाम पे रखा था, तो ये करना चाहिए था ना। तो कहते ना ना ना, बुत नाराज हो जाएंगे। चलो इस साल हम क्या करते हैं, अल्लाह वाले हिस्से में जो फसल उगी या नफा हुआ हम वो बुतों के नाम पे चढ़ाते हैं उसकी बात है। कितनी बेवकूफी की बात है ना। चलिए जरा मैं और आप इसको माजरत के साथ अपने ऊपर लेते हैं। क्या आज हमारी जिंदगी के भी तीन हिस्से नहीं है? हम भी अल्लाह के काम करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, लेकिन जरा हाथ तंग हो तो कौन सा खर्च रुकता है, जरा वक्त तंग हो घर में मेहमान आ जाए तो कमी किस में आती है, नमाज छूटती है, कुरान छूटता है, क्लासेस छूटती हैं। क्या आज हम भी कुछ इसी तरह के नहीं हो गए कि अल्लाह को सिर्फ उस वक्त हिस्सा देंगे जब और कोई काम नहीं होगा। और कुछ लोग तो अल्लाह ताला माफ करे कि अपने अमल से बता रहे हैं कि अल्लाह तू हमें दुनिया के सारे कामों से फारिग करके बिठा फिर हम तेरे काम करेंगे, वरना हम तो अभी बच्चे पाल रहे हैं और अभी तो हम अपनी जिंदगी में मगन है। अल्लाह के हाँ मेरी और आपकी कदर किस सूरत में है कि हम अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगी को साथ ले लेकर चले, फिर बात बनेगी। और अल्लाह ताला हमें इस हिस्साबंदी से बचाए। क्या मैं अल्लाह को लेफ्ट ओवर दूंगी, लिखिए। क्या अल्लाह मेरे बचे खुचे का मालिक है? और अगर अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सिर्फ वो नेमत मुझे दे जो किसी और को नहीं देनी थी, तो मुझे कैसा लगेगा। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए इनके शरीकों ने अपने औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया ताकि इनको हलाकत में मुबतला करें और इन पर इनके दीन को मुशतबे कर दें। अगर अल्लाह चाहता तो वह ऐसा ना करते, बस इनको छोड़ दो अपनी इफ्तरा परदासियों में लगे रहें। ये एक और उनकी बिदअत थी। अब ये आखिर तक सूरत में हम मक्का वालों की बिदात पढ़ेंगे, यानी दीन के अंदर जो उनकी तरफ से कमियां बेशियां थी। एक रस्म क्या थी कि अपनी देवियों को खुश करने के लिए अपने बच्चों में से किसी बच्चे को भेंट चढ़ाते थे। ये एक पहली वजह थी कत्ले औलाद की। जो बच्चा अच्छा लगता है या 10 में से 1 बेटा है उसको अपने बुत के नाम पे ज़िबह कर देते। अल्लाह ताला कहते हैं कितना जुल्म है एक जिंदा इंसान क्यों एक मुर्दा बुत के लिए कर दे। आप कहते हैं ये तो ना समझिए, तो आपने वो जुमला तो सुना ही होगा कि किसी ने एक जगह पूछवाया था किसी से, पढ़े लिखे जहनों में ऐसी बातें उठती हैं। अच्छा इमेजिन कीजिए एक कमरा है और वहां ग्रीक्स यानी जिनके आप कहते हैं कि आर्ट और कल्चर की बड़ी धूम है, कोई बहुत ही ग्रीक स्टाइल का एक बड़ा नायाब किस्म का स्टैचू रखा हुआ है और उसी कमरे में एक बच्चा भी सो रहा है और उस कमरे में आग लग जाए तो आप किसको बचाएंगे। तो जवाब क्या कहा था जी बताइए, आपने तो बच्चे का लिया ना। उनका जवाब कुछ और था, उन्होंने कहा हम उस ग्रीक स्टैचू को बचाएंगे क्योंकि वो अब नायाब हो चुका है, यूनिक है, बच्चे का क्या है वो जलेगा और बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये है हालात कि जब इंसान इस तरह से बुतों को पूजने लग जाए तो फिर बाकी हालात क्या होंगे। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर हैं जिन पर सवारी और वजन उठाना हराम कर दिया गया और कुछ जानवर हैं जिन पर ये अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, अन करीब अल्लाह इनके झूठ बांधने का इनको बदला देगा। ऐसी बेतुकी सी बातें हैं जिसका यहाँ तस्करा किया गया कि जब सच्चा दीन लोगों की जिंदगी से निकलता है तो फिर दीन के नाम पे भी इसी तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। आज भी लोग कहते हैं ये 7 सुहागने हैं, ये 10 बीबियों की कहानी है, ये औरतें नहीं खाएं, ये मर्द नहीं खाएं, ये हमला नहीं खाएं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये बातें कब आम होती हैं, जब लोग तोहम परस्त हो जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुतासिर होते हैं। कहते हैं जो कुछ इन जानवरों के पेटों में ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। नोट करें, बच्चा मुर्दा पैदा हो तो कहते हैं औरतों आओ तुम भी खा लो, और अगर जिंदा हो उसको काट के जिबा कर ले कहते हैं अब सिर्फ मर्द खाएंगे। ये है ना वुमेन डिस्क्रिमिनेशन। इस्लाम ने तो औरतों को कभी नहीं कहा कि औरतें बकरे की सिर्फ दुम खाएंगी और हेड एंड फुट खाएंगी और अच्छा गोश्त सारा मर्द खा जाएंगे, इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। तो ये बातें कब होती हैं? ये सारी औरत और मर्द की जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तब आती है जब सच्चा दीन लोगों की नजरों से हट जाता है। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली इनका बदला अल्लाह ताला इनको देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और सब बातों की से खबर है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर झूठ बांधकर हराम कर लिया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज राह रास्त पाने वालों में न थे। तो इसी तरह आज मुसलमानों में भी बाज दफा अपने बच्चों को कब्रों पर छोड़ाने का रिवाज भी है। बाज आपने सुना होगा डोले शाही के चूहे सबस चोगे पे नहाकर अपने बच्चों को किसी कब्र पे छोड़ आते हैं। इसी तरह बाज ऐसी कब्रें मौजूद हैं कि जहां जिन खवातीन के बच्चे नहीं होते तो वो जाके अपने बच्चे चढ़ाती हैं और वो कहती हैं कि मैं इधर ये चढ़ा दूंगी तो चलो कोई नहीं मेरा हो गया नहीं हुआ, कोई जाकर छोड़ आती है 6-7 साल का होगा फिर लेकर आऊंगी। ये तो हम परस्ती है, क्या आप अल्लाह को मजबूर कर सकते हैं? कुछ बच्चे जिनके गूंगे होते हैं वो जुबानें बनी हुई चांदी की वो जाके कब्रों पर डालती हैं कि ये चांदी की जुबान इस बुजुर्ग पे निछावर करूं तो अल्लाह मेरे बच्चे की जुबान खोल दे। तो आज ये हो रहा है तो उस दौर में जबकि किताब थी नहीं क्या हो रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगा ले। फरमाया यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर झूठ बांध के हराम कर लिया। यकीनन वो भटक गए और हर किस वो राह रास्त पाने वालों में न थे। वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलस्तान पैदा किए, खेतियां उगाई जिनसे किस्म किस्म की खाने की चीजें हासिल होती हैं और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मिलते जुलते भी हैं और मजे में मुख्तलिफ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक अदा करो। ये है असल बात, खाओ पियो अल्लाह मना नहीं करता लेकिन उसका हक अदा करो। जब इनकी फसल काटो तो और हद से ना गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। क्या इसराफ है खाने का कि ज्यादा ना खा लो, इतना ना खा लो कि फिर सो भी ना सको और नमाज चली जाए और तरावी चली जाए। खाओ पियो ढंग के साथ बैठो, अल्लाह ताला इससे रोकता नहीं है तुमको। फिर वही है जिसने मवेशियों में से भी जानवर पैदा किए जिनसे सवारी और बारदारी का काम लिया जाता है और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं। खाओ इन चीजों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी है और शैतान की पैरवी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सर अपने से सवाल करते हैं क्या मैं शैतान को अदुव मुबीन समझती हूँ? देखिए कोई किसी को एक चैलेंजिंग मैसेज भेज दे ना कि घर से बाहर निकलो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, हल्की फुल्की सी जरा बात भी सुनने में आ जाए तो इंसान गमजदा हो जाता है। और शैतान के दुश्मन होने को अल्लाह ने बार बार कुरान में पेश किया, फिर भी क्या हम शैतान को अपना दुश्मन समझते हैं? हम तो कहते अपने बच्चों को हम कह देते अरे शैतान ओ शरीर, हालांकि ना बच्चे को शैतान कहें ना शरीर कहें, ये मुबालगे के सीगे हैं, मना है। शरीर सबसे ज्यादा शर फैलाने वाला और शैतान सबसे ज्यादा आग में डालने वाला। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ये सिफात हो? अगर कभी आज तक कहते थे तो आज से तौबा कीजिए कि हम ऐसे नहीं करेंगे।